यहां पे हमने उनको जहां से भी जगह दी है यहां पे रखा है उनको, और जो भी हमारे दाल रोटी थी हमने शेयर की है उनके साथ, और कोशिश की है कि उनको ये एहसास ना हो कि यहां पे हमारे पर एक बोझ है, तो वो इस चीज का उनको एहसास है। लेकिन इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने जो रोल एक प्ले करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी ये ट्रेड और इसकी वॉर शुरू अफगानिस्तान में हो चुकी हुई है। एनवे पाकिस्तान चूंकि नेक्स्ट डोर नेबर है और हमारे कॉन्टेक्ट भी बहुत है उनके साथ, आना जाना भी है, ऑलरेडी ट्रेड हमारा हो रहा है उनके साथ, इसको बहुत आगे लेके चलने की जरूरत है। और जो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी जो करने की जरूरत है, वहां पे शायद पाकिस्तान के पास इतनी रिसोर्सेज तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हम कर सकते हैं, अगर हम अफगानिस्तान को जिस तरीके से हमने पहले सड़कें बना के दी उनको, हॉस्पिटल बना के दिए उनको, इस किस्म का काम अगर हम करके देंगे, इनको स्कूल बना के देंगे, इससे ज्यादा ना उनकी जरूरत है ना हमें कुछ करना चाहिए। अगर ये भी हम करके दें उनको तो वो इस चीज का वो रिगार्ड करते हैं, और वो बहुत ज्यादा और बातें भी करते हैं। लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन के लिए मैं इतना कहता चलूं कि हमें ये समझना चाहिए कि सबसे पहले अगर अफगान है, चाहे वो तालिबान है चाहे नॉन तालिबान है, उनका इंटरेस्ट अफगानिस्तान होगा।
सही सर, मेरा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, अभी आपने बल्कि एक लफ्ज कहा, मैं उसको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि रा के साथ जो दो मुलाकातें हुई वो इन हिंदू अमेरिका के इमा पर वो हुई थी, और जाहिर है जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए इस इलाके को तो कश्मीर बोन ऑफ कंटेंशन छोड़ गए, उस इलाके को छोड़ा तो इसराइल को बोन ऑफ कंटेंशन छोड़ के चले गए, फलस्तीन का मामला खड़ा करके चले गए। पाकिस्तान में अनरेस्ट है, कुलभूषण यादव के बारे में जाहिर है उनको अपील का हक भी दे दिया गया है। मुझे जनरल असद दुरानी की एक बात बड़ी अच्छी लगी थी कि जो मुखबर पकड़ा जाता है उसके बदले में, यानी ये इतना स्ट्रांग मुखबर पकड़ा गया जिसपे हिंदू, और हम इसको पहले दिन से ट्रैक करते चले आ रहे हैं, द डे व्हेन ही वाज अरेस्टेड, नफीस जकरिया साहब तब पाकिस्तान में हुआ करते होते थे, तो उसके बदले में अपने 100 बंदे छुड़वा सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने पहले डिनाई किया था कि कुलभूषण यादव को तुम जानते ही नहीं, बाद में चला कि वो तो हाजिर सर्विस मुलाजम था, डिस्टेबलाइज करने के लिए आया था। इंटरनेशनली पाकिस्तान इसको प्रूव नहीं कर सका कि यस पाकिस्तान ने सफर किया और इंडिया डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो अब उसको अपील का हक भी मिल गया है, तो यहां पे आप क्विक वर्ड्स में क्या कहेंगे?
देखिए, जो पाकिस्तान के गुज़श्ता कुछ अरसे जो बहुत बड़ी गलतियां हैं, एक किसको जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस की जो हमने जब जुरिस्डिक्शन तस्लीम कर ली और हम चले गए, उसके बाद फिर जो उनकी जो भी ऑब्जर्वेशन थी या जो भी उनकी कहना था पाकिस्तान को, उसे कंप्लाई करने का मसला था पाकिस्तान के लिए, करना पड़ता पाकिस्तान को, पहले ऑर्डिनेंस के जरिए और बाकायदा एक बिल के जरिए उसको उन्होंने अपील का हक दे दिया है इसमें। लेकिन भारत की कोशिश यह है कि ये किसी तरीके से इसको डिले किया जाए, कि वो ना तो काउंसिल एक्सेस ऑन रिकॉर्ड चाहता है, ना वो इसको अपील का हक के, इसका केस ऑलरेडी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तो कहा है भारत से तो आप आइए अपना वकील भेजे यहां पे,
टेक्निकल फॉल्ट आई, हमारी आवाज का दिक्कत हमें आ रही है, विल ट्राई टू गेट कनेक्शन अगेन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि बड़ी नई बात जो मुझे पता चली है कि हिंदुस्तान उस केस की पैरवी भी नहीं चाहता, उसको डिले करना चाहता है, मगर ज़ाहिर है पाकिस्तान की बाज़ जगहों पे गलतियां हैं और बहुत बड़ी गलतियां हैं। जनाब हमारे साथ, उनसे दोबारा हमारी लाइन बहाल हो गई, मेरा ख्याल है मिल गई लाइन कि नहीं मिली?
जी मिल गई जी
जनरल साहब, और लाइन कट गई, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट मेरा। अच्छा, हम बाज़ों का रिज्यूम कर लेते हैं, मैंने कहा इंडिया ने कांटी डाल दी ना ताकि सही खबर ना जा सके। सर, कुलभूषण यादव के हवाले से पाकिस्तान ने थोड़ी सी लूज बॉल प्ले की है।
जी हाँ, हमने शुरू में लूज बॉल प्ले कर दी, लेकिन अब जो कि इस हुकूमत ने काम किए हैं वो बिल्कुल ठीक काम किया है, बिल पास हो गया है, अब ऑनर्स टोटली भारत पर है। अगर भारत इसको वेल नहीं करता तो फिर पाकिस्तान इसको सजाए मौत तक लेके जा सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक बहुत बड़ा मशहूर केस हुआ था गैरी पावर्स और कर्नल जॉर्ज एबल का, ये जो यूटू अमेरिकन का यूटू पायलट था उसका एक तरफ था, और एक रशियन जासूस पकड़ा गया था जो अमेरिका में था, उसका काफी देर मुकदमा चला, तो उस पूरे मुकदमे में बोला नहीं इनसे, तो आखिर में जज तंग आके उसने कहा, देखिए लुक हियर, वी हैव प्रोवाइडेड यू नॉट ओनली दी अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड यूर सेल्फ, हमने लॉयर भी आपको दिया है। तो जो उसका नाम जो मैं दे रहा हूँ वो उसका नाम एक्चुअली नहीं जॉरेबल, उसका नाम नहीं है उसका, ये अमेरिका ने नाम दिया था उसको। तो उसने कहा जी आई डेंट मेक यूर लॉ, दैट इज ऑल ही स्पोक। लेकिन अल्टीमेटली उसको उन्होंने स्वैप कर लिया बाद में आपस में, दोनों हाई प्रोफाइल वो थे
जी।
और ये इस गेम में ये जायज है और होता है ये।
हम भी ये जनरल असद दुरानी साहब ने भी यही कहा था कि चाहे हाई प्रोफाइल बंदा है, इसकी जगह पे आप पाकिस्तान इंडिया के साथ, इंडिया ने बतेरे बंदे पकड़े हुए, आप बदले में कोई लोगों को लें छुड़वा लें
जी। मेरा ख्याल अल्टीमेटली शायद वहां पे हम चले जाएं, वो इट नॉट बी अ बैड डील इन द सेंस के हमारे अपने जो लोग पाकिस्तान के खतर काम करते वहां पकड़े गए हैं उनको ले आए पाकिस्तान में। हाँ ये जरूर है कि इसकी वजह से कुलभूषण यादव की वजह से जो पाकिस्तान में जितनी जारी नुकसान हुआ है उन लोगों के साथ शायद ये इंसाफ नहीं होगा, लेकिन लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखते हैं मुल्क के लिए क्या बेहतर है तो ठीक है फांसी हो जाए।
बेशुमार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, कहते हैं कि अगर ट्विन टावर्स का एक वाकया हो गया तो उसके बाद पूरी दुनिया का नक्शा भी तो बदल गया ना। तो ये सर माजी जमाल साहब का भी एक सवाल है, वो एक एग्जांपल देना चाह रहे हैं जी।
नहीं नहीं वही जनरल साहब, सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं आप
जी? सलाम अलैकुम माजिद,
अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कि आप जब मिसालें दे रहे हैं तो उसमें हम तो खुद ही इस चीज से गुजर रहे हैं। अभी चाइना ने चाइना के एक CFO को हमने पकड़ा यहाँ पर, खातून को, और चाइना ने
दो बंदों को पकड़ लिया कैनेडा के
जी। ये गेम चलती रहती है ये, और ये गेम जो इस गेम के खिलाड़ी हैं वो तो मेरी बात को शायद इतना पुराना माने, आम आदमी को शायद ये बात समझना है। इस गेम में ये ले और दे चलता रहता है इसमें, और जो पाकिस्तान के लोग पकड़े गए हैं इसकी जगह हम अगर ले सकें तो इन्हें वे जो हमारे जो और काम करने वाले हैं उनको ये एश्योरेंस होगी कि पाकिस्तान उनको भूला नहीं है। और जहां तक यादव का ताल्लुक है, इससे तो जो कुछ हमने
पता करना था लगा
दिया है
जी सर,
इससे ज्यादा शायद पाकिस्तान को इसके और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब ये गेम है जिसमें कौन ब्लिंक करता है पहले, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान इज प्लेइंग राइट
इंशाल्लाह। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन जो आपके साथ है, आपका कोई क्वेश्चन? मेरा सर, मेरा आपसे जो लास्ट क्वेश्चन है इस गवर्नमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान कंटिन्यूसली डिनाई कर रहा है कि हमने अड्डे नहीं दिए नहीं दिए नहीं दिए नहीं, मगर अमेरिका ने हमारी ऑपोजिशन लीडर्स को भी मिलना शुरू कर दिया है, और अमेरिका एक ही बात कह रहा है कि हाँ अड्डे दे दिए हैं। अब किसको सच मानू और किसको झूठ मानू?
देखिए मैं अपना तो ख्याल, मैं अपनी ख्याल ये कि हमें अपनी अकल और दानिश से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे क्यों देगा? एक तरफ यह है कि शायद पाकिस्तान फैटफ की वजह से मजबूर है, या पाकिस्तान को IMF के जरिए पाकिस्तान का बाजू मोड़ा जा रहा है, बिल्कुल जायज है, ये बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हो सकती हैं। और यह भी कि जब 9/11 हुआ तो पाकिस्तान को इतना मरोड़ा गया कि पाकिस्तान ने अड्डे भी दिए और इस्तेमाल भी, तारीख का हिस्सा है हमारे, उससे पहले भी बड़ा बेर भी हम दे चुके हैं उनको। लेकिन वो हालात आज के हालात में जमीन और आसमान का फर्क है। उस वक्त एक बहुत बड़ा जो मेजर प्लेयर, जो इमरजिंग पावर है, जिसके खिलाफ अमरीका की कोशिश है कि सारी मगरबी ताकतों को इंक्लूडिंग भारत, जापान, कोरिया एंड एवरीबडी, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको यकजा करके उसके खिलाफ खड़ा करे, वो अगर इस खत्ते में पाकिस्तान की वजह से है और CPAC जिसमें गवादर एक जीवल है देर क्राउन, अगर ये उनके हाथ से निकल जाता है CPAC जराम से गिर जाएगा, तो क्या पाकिस्तान ऐसी हिमाकत कर सकता है? जबकि चाइना ने गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान में तकरीबन $50 अरब की इन्वेस्टमेंट प्लस लोन्स करके पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसमें बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है, और अब भी है उसके बीच में लगे हुए उसमें। तो पाकिस्तान के लिए क्या ये पॉसिबल है कि उस तरह करके काम करे? नंबर एक। नंबर दो, अगर अमेरिका ने जिस तरह से पहले पाकिस्तान का नुकसान किया और जो पाकिस्तान का हक बनता था, जो डील हुई थी, मुआहदा हुआ था जिसमें कोलिशन सपोर्ट फंड जो था वो मिलना था पाकिस्तान को, वो हमें रोक के रखा, वो एज ए हमारे लिए वो क्या कहते हैं ब्लैकमेल टूल इस्तेमाल करते रहे उसको, बजाय इसके कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा साथ दे, तो उन्होंने यहां तक किया उसमें, तो क्या पाकिस्तान फिर वही गलती दोहराएगा इसमें? और तीसरे, देखिए जो 90 की दिहाई का जो दौर था और आज का बहुत मुख्तलिफ दौर है, हमारी जो पोलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है, खासतौर पर मिलिट्री लीडरशिप, ये आग और खून से निकल के यहां तक पहुंची है। اور خان صاحب تو بڑا واضح اس بات پہ بات بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ امن اور افغانستان کے خلاف انہوں نے جب یہ ڈرون اسٹرائک کا بہت ہوا تو انہوں نے باقاعدہ دھرنے دیے ہوئے اس کے اوپر, وہ کیسے الاؤ کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ اگر ہم اپنے صحیح انالیسز پہ جائیں, امریکہ کا پریشر ڈیفینیٹلی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. میں امریکہ کی جگہ ہوں, میں بھی یہ کوشش کروں. لیکن ایک طرف طالبان کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ بھائی اگر ہم دوبارہ امریکہ کو افغانستان سے اٹھا کے اپنے گھر میں لے آئیں گے تو جب وہاں بیٹھ کے اس نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا ہے یا ہونے دیا ہے تو یہاں بیٹھ کے کیا نہیں کرے گا وہ.
ٹھیک سر.
تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ٹھیک ہے, امریکنز یہ بار بار یہ سوچا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارے اندر ایک ڈسکشن چلتی رہے, حکومت پہ اعتماد نہ ہو لوگوں کا اور ہماری افواج کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہیں, چیف آرمی صاحب کو لوگ بلیم کرتے رہیں, ڈی آئی سی کو بلیم کرتے رہیں, دوسرے پاکستان اور طالبان کے درمیان بعد اعتمادی کی فضا نہ صرف بنے بلکہ اس کو بڑھاوا دیں اس کو, اور چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں ان میں درار ڈالنے کی کوشش کریں. تو یہ سب مقاصد کے اصول کے لیے کرتے رہتے ہیں. اور پاکستان کے اندر سے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر جو بیٹھی ہوئی ہماری جو کالی بھیڑے ہیں وہ بھی اس کو ہوا دیتی ہیں.
بہت شکریہ.
مطلب ایک میں جلسہ مگر ایک بار بار جو پاکستان کے اینالسٹ ہیں وہ دے آر اسٹل ٹاکنگ اباؤٹ ایک کوئی ان ریٹن اگریمنٹ جو پاکستان اور امریکہ کا ہوا ہے جس کے تحت انہوں نے وہ ہوائی اڈا دیا تھا, تو وہ ہوائی اڈا اینڈ آرم فورسز جو ان کی وہاں پر ان کو ابھی بھی اس کو کنٹینیو رکھیں گے, اس کو اجازت دیں گے؟
مشرف صاحب کے دور میں جو ہوا تھا وربل,
وہ جی دو ایئر بیسز کی بات کرتے ہیں, وہ تو اس وقت پاکستان نے خالی کرا دی امریکہ سے.
اگر وہ جو مشرف دور میں ہوا تو وہ آج امپلیمنٹ تو نہیں ہو سکتا نا
جی, کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو معاہدہ ہوا تھا اس کی سب سے زیادہ خلاف ورزی تو امریکہ نے کی ہے. امریکہ نے اگلے دن سے رپورٹس بھی ہمارے میڈیا میں کہ چیف نے بڑا واضح طور پر جو ان کے سی آئی کے سربراہ آئے تھے جب انہوں نے کہا کہ اس ریمانڈ کی ان کے اس قسم کی آگے رکھی تو چیف نے بڑا واضح طور پہ نہ کر دیا ان کو, اور جب انہوں نے کہا کہ ہم یہ استعمال کریں گے ڈرونز کریں گے اور ٹیررس کے خلاف کریں گے, اس نے کہا جی پہلے بھی تو آپ نے یہی کہا تھا, اور 370 ڈرون اسٹرائک کیا آپ نے بغیر پاکستان کو بتایا اور پاکستان کے اندر. تو وہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے نا, میں اسے بات باری کہتا ہوں کہ یہ ان معاملات کو سمجھتی ہے. ہمارا ہاں چونکہ بد اعتمادی کی فضا قائم کرنا ایک خاص سیاسی نقطہ نظر کو یہ سوٹ کرتا ہے, تو بار بار اسی چیز کو ہم اٹھا کے لے کے آتے ہیں.
بہت شکریہ سر. میں مختصر کیونکہ وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ, میں ایک چیز کے اوپر پروگرام اور سوال کرتے ہوئے, سر ویری بیڈ کوسچن, اور میری ایک یعنی سوشل میڈیا کا اتنا اثر ہے کہ یہ ایک گھریلو خاتون ہے جو بہترین ماں ہے, جس نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنایا یہاں کینیڈا میں رہتے ہوئے. یعنی یہ جو سوشل میڈیا نے اس خاتون کے دماغ پہ بھی اتنا اثر کیا ہے کہ وہ پاکستان آرمی کے بارے میں اس نے یہ لفظ کہا جو میں آپ سے کنوے کرتی ہوں. ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک کینیڈین براڈ کاسٹ کو اپنا ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے سوشل میڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. یہ جو واقعہ لندن میں ہوا ہے, یہ جو نفرتیں دنیا میں پرموٹ ہو رہی ہیں, اس کا مورد الزام سوشل میڈیا, یعنی وہی ہائبرڈ وارفیئر کہ اب جنگوں سے ویسے نہیں لوگوں سے گولیاں مروائی جائیں مگر نفرت اتنی گاڑ دی جائے. پاکستان میں کسی قوم کو ترقی کے لیے کسی قوم کا مورال بلند ہونا سب سے بڑی بات ہے, اس کو اپنی چیزوں پہ فخر ہونا, مگر سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری قوم کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے بعد ہمارے اداروں کے خلاف بھڑکا دیا گیا. ابھی ریسنٹلی فردوس عاشق اعوان صاحب کا جب واقعہ ہوا تو یہ ایک گھریلو خاتون ہے تو بڑے آرام سے مجھے کہتی ہیں سارا کچھ تو پاکستان آرمی کرا رہی ہے. میں نے کہا کیا مقصد پاکستان آرمی؟ لو بھلا فردوس عاشق اعوان آرمی نہیں تو بٹھائی ہوئی ہے, بیکاز دیز آر دی انفارمیشن, دس از دا کائنڈ آف انفارمیشن پرووائڈیڈ تھرو دی سوشل میڈیا دیٹ آرمی انٹروینز ان دا ڈپارٹمنٹس. پاکستان کے پریزیڈنٹ کے پیچھے دو آرمی کے فوجی بیٹھتے ہیں تاکہ وہ اسپائے کر سکے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کیا بات کر رہا ہے. یہ جو ہماری فردوس عاشق اعوان, شی مسٹ بی فائرڈ, مگر شی از دے تھنک دیٹ شی از اے ٹاؤٹ پلیسڈ بائی دا آرمی ان ٹو دس ڈپارٹمنٹ بیکاز شی مسٹ ہیو ڈن سم تھنگ فار دا آرمی. اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے. یہ میں ایک عام عورت کا ویو پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں, اینڈ آئی سی آل دیز تھنگز آن دا سوشل میڈیا, کیسے پاکستان کی فوج کے خلاف عام آدمی کو کیا جا رہا ہے. پھر لائن خراب ہو گئی. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, مجھے اس کا جواب چاہیے, لازمی طور پہ مجھے اس کا جواب چاہیے. جیتی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن, اور میں خیال ہے ایک عورت جو اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوا سکتی ہے, یہ اس کا بڑا ویلڈ کنسرن ہے. یعنی ایک عام آدمی کے دماغ کو سوشل میڈیا نے اتنا کنٹیمنیٹ کر دیا ہے کہ وہ خود بھی پاکستان فوج. جی سر,
دیکھیے جو پریزیڈنٹ کے پیچھے جو دو فوجی بیٹھتے ہیں, ایک سم تھنگ کالڈ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ. پریزیڈنٹ از دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ, وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, از آلسو دی سپرنگ کمانڈر آف پاکستان آرمڈ فورسز. تو اس لیے جو پروٹوکال جس کا جو ہمارا آئین میں اس میں لکھا ہوا بلو بک میں, پریزیڈنٹ باڈی گارڈ آپ دیکھو تو بگی پہ بیٹھتے ہیں, ان کے آگے بھی گھوڑے چلتے ہیں, لوگ ریپین چل رہے ہوتے ہیں, یہ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کا حصہ ہے. اور جب پریزیڈنٹ جب بھی کسی آفیشیل فنکشن میں بیٹھتے ہیں, آفیشیلی بیٹھتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ کلامتی طور پر پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے طور پر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ پریزیڈنٹ کو سپائی کریں. پریزیڈنٹ کو سپائی کریں کیا کرنا ہے انہوں نے؟ نمبر ایک. نمبر دو, دیکھیے فردوس عاشق وان صاحب کا جو کچھ بھی ہوا, ان کا پہ ایک نقطہ نظر ہے جس میں ان کی جو بات ہے, کون سچ ہے کون جھوٹ ہے, جو ہم نے تو جو میڈیا نے ہمیں دکھایا ہم نے صرف وہی دیکھا. وہ ایک خاتون ہے, انہیں اگر کوئی سٹیپ اٹھایا ڈیفینیٹلی کوئی ایسی ریزن ہوگا اس کا. اس میں ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, کیا پاکستان فوج کو خدا نہ خواستہ اللہ تعالی رحم کرے, دیر از نو کمنٹ آن فردوس عاشق اوان صاحبہ, اینڈ شی از اے ونڈرفل لیڈی, دی وے شی از وٹ ایور, جو بھی کر رہی ہے مجھے ناپسند وہ الگ بات ہے, لیکن یہ کہ حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت کو پسند ہے تو ٹھیک ہے. بھائی ووٹ دے کے تو آپ نے ان کو بٹھایا, میں نے تو نہیں بٹھایا نا ان کو. اگر جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے لے کے آ گئے ہیں تو پاکستان میں فوج کا یہاں سے کہاں سے آگے بیٹھ کے. اس میں
وہ کہتے ہیں فوج کا آشیرواد ہے, یہی تو سر میں آپ سے کہہ رہی ہوں, وہ کہتے ہیں فوج کی انٹرفیئرنس ہے, دے برنگ دیئر اون پیپل, ان الیکٹڈ پرسن از یو نو شی از کیشنگ ایوری تھنگ آؤٹ.
دیکھیے یہ تو حکومت کی مرضی ہے نا, پہلے فیڈرل لیول پر تھی وہاں سے اس کو نکال دیا. اگر آشیرواد ہوتی تو اس کو فیڈرل گورنمنٹ سے کیوں ہٹایا جاتا اس کو ادھر سے؟ اب پروینشل گورنمنٹ میں اگر لے کے آگے ہیں تو لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو فرینکلی, سو میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا.
ٹھیک سر,
بٹ یہ کہ فردوس صاحبہ ہیں, شی از اے پولیٹیکل پرسن, وہ پہلے بھی پالیٹکس میں رہی ہیں, کاف لیگ کے ساتھ رہی ہیں, پھر پیس پارٹی کے ساتھ رہی ہیں, اور پھر آ گئی ہیں, تو ہاؤ شی مینجز ہر سیلف ان ٹو بی ان دیٹ پلیس. فوج کا ایس ایچ کی کم ہے جی, فوج نو کی لوڈ ہے جی.
سر میرا کہنے کا مطلب میں تعین بلکہ یہ کیتا کہ اس وقت اگر پوری دنیا دے وچ اسلام فوبیا ہے یا ہیٹرڈ ڈیولپ کی جاتی ہے, وچ سوشل میڈیا از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول. یعنی دیر آر پیپل, پیڈ پیپل, دے آر ڈیولپنگ ڈیوز ٹو ڈیولپ ہیٹرڈ امنگ دا پیپل بائی کریئٹنگ دوز اسٹوریز, فیک اسٹوریز, جس میں لوگوں کے لیے, جو ہمارا لندن کا واقعہ ہوا یا کوئی اور واقعہ بھی اگر اس میں ہوتا ہے, تو سیم وے پاکستان کی آرمی کے لیے اتنا زیادہ مواد یعنی میڈیا میں, سوشل میڈیا پہ رول آؤٹ ہو رہا ہے, جس میں عام آدمی کو ہمارے اپنے بہترین ادارے کے ساتھ نفرت پیدا کی جا رہی ہے. میرا کنسرن صرف یہ ہے سر.
نہیں, بات آپ کی صحیح ہے. دیکھیں ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے یہ, اور اس میں پاکستان کے اندر سے چند ہماری سیاسی قوتیں ہیں, ان کا مین رول بھی ہے, اور کچھ ہمارے شخصیات ہیں جو میڈیا میں وہ بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہیں یہ, اور ان جنرل سوشل میڈیا از اے ٹول جس کو استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیے پرسپشن بلڈنگ ایک سائنس کی حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے اس وقت, ہمارے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. آپ نے پچھلے بار مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو, جو آئی ایس پی آر کو, ان کو چاہیے یا جو بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ایکٹیولی پرو ایکٹیولی اس میں آگے آئیں, جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف, پاکستان فوج کے خلاف, اس کو وہ اس کا توڑ کریں اس کا. اور آئی ایم شیور جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی, ان کو کرنا بھی چاہیے. تو یہ پرسپشن بلڈنگ جو ہے نا, اس کا توڑ آپ صرف کاؤنٹر, صرف بات کر کے, میرے آپ سے بات کرنے سے نہیں ہوگا, اٹ از اے کانسٹنٹ ایفرٹ. یہ بیٹری بڑھ رہی ہے پاکستان.
ٹھیک سر, بہت شکریہ آپ کا. اور میں صرف کسی ادارے کو نہیں کہہ رہی, میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میرے ریسورسز کم ہیں یا اگر مجھے کوئی ریسپانسبل لوگ نہیں مل رہے, تو عوام کین بی ریسپانسبل. آپ خود دیکھیے گا کہ آرمی کے بارے میں تو چھوڑیے, دیر آر سوشل سیلز ہیں جو آرمی کے اگینسٹ نفرت, فرضی خبروں کے ساتھ نفرت پیدا کر رہے ہیں. ایون قرآن پاک کی آیات, احادیث کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے اور وہ غلط نمبر ہوتا ہے, غلط چیز آگے پروموٹ ہو رہی ہوتی ہے. دس از, اور وہاں پر اگر میرے ریسورسز یا میرے ملک کے ریسورسز کم ہیں یا وہاں سوچ کے ساتھ لوگ نہیں بیٹھے جو 30 سال آگے یا 50 سال آگے سوچ سکتے ہوں, تو عوام کو خود چاہیے کہ وہ ان خبروں کے اوپر یقین نہ کرے آپ, اور اس کو بلا وجہ آگے فارورڈ نہ کریں. سر آپ کا بہت شکریہ, اور میں زندگی میں اگر کسی انسان کی تعریف کرتی ہوں, آئی آلویز پریز دا کریئٹر بیکاز ایوری تھنگ از بین کریئٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ وی آل ہیو ٹو گو بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یو آر لوکنگ ویری ہینڈسم اینڈ یو آر لوکنگ گریٹ, اور آپ کو دیکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد اینڈ پاکستان آرمی زندہ باد.
تھینک یو بہن, تھینک یو.
ماشاء اللہ میری آرمی آلویز یو اسٹے. میں بلکہ آپ سے یہ ٹپس چار لوگوں کو دلوانی ہے کہ اپنے آپ اسٹریٹ بیٹھیے, you have the keep the confidence in you and you will be the winner inshallah. Thank you sir.
Inshallah Pakistan will be the winner ji, inshallah.
Pakistan zindabad. Acha laga. I need your feedback. Main aapke sath ek cheez share karungi, I will try. Usme ye tha ki agar aapne qaum ko girana hai na to aapas mein jhagda paida kar dein, qaum ka moral gira dein. That will be more than enough. ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. فیض احمد فیض کا کلام ٹاپ آف دا آور اس کے بعد جائے گا. ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے. فیض احمد فیض کا کلام. اوپا جی سنو, تنو من امید چنگا لگے گا, ہے گا تو لمبا پر میں پورا نہیں پلے کر سکتا.
ہم دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں, ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے, ہم دیکھیں لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے کوہے گراں, جب ظلم و ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے, جب ظلم و ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے, ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی, اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں. अब जुल्म सितम के कोहे गरां, जब जुल्म सितम के कोहे गरां, रुई की तरह उड़ जाएंगे, रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, हम
are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
कोविड-19 से हमने ये सीखा है कि एक छोटी सी चीज कितनी तेजी से फैल सकती है, एक उठती लहर की तरह। अगर हम में से ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवा लें तो हम एक बड़ी लहर शुरू कर सकते हैं, कनाडा के लोगों की लहर, जो हमें अपने प्यारी जगहों और अपने प्यारों के पास लौटने में मदद करेगी। हम सब वैक्सीन लगवा कर मदद कर सकते हैं। canada.ca/covid-vaccine पर मजीद जानें। हुकूमत कनाडा की तरफ से एक पैगाम।
रोग फास्ट अफोर्डेबल रिलायबल रेजिडेंशियल एंड बिजनेस इंटरनेट, अनलिमिटेड इंटरनेट ओनली फॉर 39.99, नो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, नो मोडेम रेंटल फी, वरी फ्री इंटरनेट एंड सेविंग्स आर जस्ट क्लिक अवे। साइन अप टुडे विद goroc.ca, goroge.ca, और कॉल 647-273-3291, 647-273-3291।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नु कॉल करो
416-655-2000।
कोविड-19 करके सारा काम ऑनलाइन हो गया, ग्रोसरी ऑनलाइन हो गई, ट्यूशन ऑनलाइन हो गई, और ता होर कल मेनू रिया ने दसिया कि सोडी फर्नीचर वाले भी हुन ऑनलाइन फर्नीचर सेल कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक सुनिया, ते हुन इना दा स्टोर भी खुल गया है
ब्रम्पटन दे सब तो वड़े फर्नीचर स्टोर्स विचो एक सोडी फर्नीचर ते हुन कोविड-19 दे दौरान इना दी वेबसाइट sodifurniture.com ते जाओ अते अपनी पसंद दा फर्नीचर सिलेक्ट करो, स्टोर विच आके सेम फर्नीचर देखो अते सेम प्राइस ते लो। इना दी कैनेडी लोकेशन हुन खुल चुकी है। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल 9058747171।
कैलेडन सब्जी फार्म, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फार्मर्स मार्केट, हर तरह के ताजे ऑर्गेनिक सब्जियां, पौधे, फल की वैरायटी स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म। इस सीजन में पौधे, फूल, फल और सब्जियां लगाने के लिए पनीरी की बेशुमार वैरायटी मौजूद। हेल्दी लिविंग डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म, कैलेडन सब्जी फार्म। SOPs का खास ख्याल और हर तरह की मिट्टी, खाद, रोज बुशेज और फ्रूट ट्रीज भी दस्तयाब। 12050 एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट मेफील्ड रोड का इंटरसेक्शन। 9059653633, 905-965-3633, sabzifarm.ca।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, या कॉल करो 905-450-2828, 905-450-2828।
CIBC Global Money Transfer के साथ अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दें। CIBC Global Money Transfer की $0 ट्रांसफर फीस का फायदा उठाएं और अपने परिवार तक पहुंचाएं और भी ज्यादा पैसे। आज ही cibc.com/globaltransfer पर जाएं और प्रोमो कोड GMT50 के साथ अपने पहले ट्रांसफर पर वापस पाएं $50। शर्तें और सीआईबीसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यूब थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब 519-622-0660, quicktruckloop.com।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक। ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं। पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स। मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
हेयर मैक्स लेकर आए हैं अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन विद वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एडवांस एंड डिजिटल हियरिंग एड्स, वो भी सबसे कम कीमत में। किसी भी हियरिंग एड की खरीदारी पर बिना किसी फिकर के 3 साल की वारंटी भी हासिल कीजिए। फ्री नो ऑब्लिगेशन हियरिंग टेस्ट के लिए आज ही कॉल कीजिए हेयर मैक्स। सर्व करते हैं GTA में 2 लोकेशन से,
जेन एग्लिंटन या फिर दंदास एरनडेल के इंटरसेक्शन पर। 416-792-8792 हियर मैक्स 416-792-8792।
फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज या फिर होवे लोन,
सोचो ना बस, बिल्कुल भी
होने मिलाओ फोन। 416-502-8000। स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या काख दा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000। लाइसेंस नंबर 10845। इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
जी सामान्य नाजरीन, वेलकम बैक अगेन। एंड 5:32:56 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और सब अब आपको लिए चलूंगा आपके पते की बात बताने के लिए। और कहां पर ले जाऊंगा मैं, रिजुना और उसके रिजुना के साथ साथ बहुत सारे और ऐसी इनके पास मेडिसिन हैं जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में बेहतरीन बन सकती हैं। क्या है वो, उसके लिए हम लेके आए हैं अशोक जी को। अशोक जी, वेलकम टू रेडियो साजो आवाज, कैसे हो सर आप?
बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी सेकंड डोज लग गया।
साहब ये तो मैंने छुपा के आपको बताई थी, आपने तो पूरी दुनिया को बता दिया।
बस जी, ऐसी क्या बात है, अब देखो आप नाचो गाओ, अब बस मौजा ही मौजा,
मौजा ही मौजा जी, मौजा ही मौजा।
हमारे केसेस भी कम हो रहे हैं, सो
अल्हम्दुलिल्लाह।
हो सकता है कि 1-1.5 महीने में बॉर्डर वगैरह भी खुल जाए तो।
नहीं, मेरा ख्याल है कि इस आज तो आपने देखा होगा जैसे कि 447, सो बिफोर द एंड ऑफ द वीक आई थिंक वी गोना गो डाउन बिलो 400। मेरी अपनी प्रोडिक्शन यही है इंशाल्लाह। बताइए साहब, रिजुना और बहुत सारी चीजें हैं जिनके फवायद बताइए सर आप।
हाँ जी, रिजुना का ऐसा हाल है कि चाहे यू नो कुछ भी चलता रहे दुनिया में, रिजुना हमेशा ही स्ट्रांग रहा है और आजकल के जमाने में और भी स्ट्रांग हो गया, बिकॉज ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और कई बार आपने खुद भी देखा को, मैं भी कई बार महसूस करता हूँ सवेरे उठने के बाद सुस्ती छा जाती है और दिमाग में ये आता है कि अच्छा अब यही रूटीन है, अब जाओ काम पे जाओ ये जाओ, और वो कभी कभी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तो ये जो रिजूना है, जब आपके बदन में इतनी फुर्ती ये लाता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, तो खुद ब खुद आदमी जो है ना बिस्तर से निकल के ऑलमोस्ट भागने की कोशिश करता है। और ये एक ऐसी चीज है कि मेरे को काफी लोगों ने कहा है कि वो जब काम पे जाते हैं, आजकल तो ऑफिस तो कम ही लोग जाते हैं, और वहां पे आसपास जो काम करते हैं उनके कलीग्स वगैरह, उनसे भी उनको इट्स लाइक एन जैसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं कि उनके चेहरे पे इतना लगा होता है कि बिकॉज दे फील इट, क्योंकि बेसिकली अगर आपको उठने बैठने में तकलीफ नहीं हो, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लोग भी आपको अच्छा ही कहेंगे, और ये सारी चीजें आपको रिजूना से ही मिलेंगी। तो आप इसको ट्राई करके देख लीजिए। जो भी हम कुछ कहना चाहते हैं और कह सकते हैं इस वक्त में, जो कि वक्त की पाबंदी होती है, तो आप इस कभी भी हमको फोन करके आप इसके बारे में और भी इसका बाकी बेनिफिट्स भी देख सकते हैं, हमसे सुन सकते हैं। तो ये आपको ऐसी चीज मिल रही है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है, बस इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि मैंने अपने खुद भी लिया है, लोगों के जो टेस्टिमोनियल्स हैं उनको भी ये देने से उनकी इतनी जिंदगी बदल गई है कि कुछ पूछो ही नहीं। बिकॉज मैं कई लोग जो रिजूना लेते हैं वो कहते हैं जी हम आपके रेडियो शो में आपके लिए बोलना चाहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई किसी गूगल वगैरह पे लिखो, तो क्योंकि लोगों का कभी भरोसा नहीं आता है कि भाई पता नहीं ये किसी दोस्त को बोला कि भाई तुम फोन करके देख लो तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम कहते, मैंने कहा नहीं नहीं यू मोस्ट वेलकम, लेकिन रिजूना है ही ऐसी चीज है कि जिससे बहुत बहुत सारे फायदे होते हैं, और ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है, इसमें ना तो कोई एनिमल फैट है ना केमिकल है और ना ही कोई साइड इफेक्ट है। सबसे जो भरोसे वाली बात यह है कि यह हेल्थ कैनेडा से अप्रूव्ड है, तो इसलिए आपका कोई भी इसका नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदे ही फायदे होंगे। आपकी किडनीज लिवर, आपको थकान तो वैसे ही दूर हो जाती है, आपको अगर हाजमे में कोई प्रॉब्लम है, जोड़ों में कोई प्रॉब्लम है, या आपको वैसे सुस्ती लगती है, ये सारी चीजों के लिए ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट गुड फॉर वुमेन, गुड फॉर मेन, गुड फॉर चिल्ड्रन, और हमारी जो बाकी सारी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ अगर रिजूना लें तो ये बहुत ही बेहतर हो जाता है, क्योंकि रिजूना से आपकी बेस बन जाती है। फॉर इंस्टेंस आपको अगर स्ट्रेस है, रात भर नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं, सवेरे दिमाग थका थका सा रहता है, तो हमारा स्ट्रेस फ्री आप इसके साथ ले सकते हैं, तो ऐसा ऐसा आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और आपको आराम से नींद भी आ जाएगी। एंड ये याद रहे कि ये स्लीपिंग टैबलेट नहीं है, इसमें कोई नशा नहीं है, आपको एवरीडे लेना है, और नींद आए या ना आए, और पूरे 3 महीने कोर्स के बाद आप बिल्कुल 100% दुरुस्त सब कुछ हो जाएगा। और हमारे पास बाकी जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ऑस्टियो केयर है, वो आर्थराइटिस के लिए है, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, टाइप 2 डायबिटीज, तो हमारे जो 100% ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इससे आपका इंसुलिन भी आहिस्ता आहिस्ता बनता है और साथ में आपको ये राहत भी देता है। तो आपको पता ही है कि डायबिटीज एक ऐसी चीज है, हाँ इसके साथ आपका वेट लॉस के लिए हमारे पास स्पेशल दवाइयां हैं, और टाइप 2 डायबिटीज और वेट का तो आपस में काफी गहरा रिश्ता है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो इन सब चीजों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास है शुगर केयर करके दवाई है, और साथ में आप इम्यून सिस्टम को और बूस्ट देने के लिए हमारे पास गिलोय है, गिलोई जिसको कहते हैं GILOY, फैटी लिवर के लिए हमारे पास लिवेक्स प्लस है, और औरतों के लिए, लेडीज के लिए अगर उनको प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स में जल्दी से आते हैं या देर से आते हैं, या ठीक टाइम पे आके भी उनके क्रैम्प्स वगैरह आते हैं स्टमक में, तो उसके लिए हमारे हार्मोन बैलेंस के लिए SMA है, और मर्दों के लिए NHX, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप हमको फोन कर सकते हैं, या आजकल तो आप स्टोर में भी अब अंदर भी आ सकते हैं। तो हमारा नंबर है 905-790-7734, दैट्स 905-790-7734। हमारा मेन यूनिट है, दैट्स ऑन एयरपोर्ट रोड और सैंडलवुड ब्रैम्पटन में, 2955 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, यूनिट 15। और आप किसी टाइम भी आ सकते हैं, कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फ्री, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाय। आप ठीक से अपना यू नो जो भी कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं, इट इज 100% कॉन्फिडेंशियल। हमारा नंबर अगेन है 905-790-7734। जो ईस्ट एंड में हमारे सुनने वाले भाई बहन हैं, दे कैन गो टू 900 मिडल फील्ड रोड इन स्कारबरो, स्कारबरो गुरुद्वारा के सामने बिल्कुल उसके अपोजिट ग्रोसरी स्टोर है, कैश एंड कैरी सब्जी मंडी, आप वहां से भी ये प्रोडक्ट्स उठा सकते हैं। हमारा नंबर अगेन है 905-790-7734। वी आर ओपन ऑल 7 days और कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फ्री, सो गिव अस अ कॉल 905-790-7734।
नंबर सुन लिया साहब आपने, sbmherbal.com पर जाइए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 905-790-7734। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।
थैंक यू जी साहब, मैं आपसे कह रही थी ना डीमोरलाइजेशन के बारे में, आप गूगल करके देखिएगा, मैंने बल्कि इसको खास तौर पे निकाला, मेरे पास एक और भी वीडियो भी इसकी है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो है द फोर स्टेप्स टू फॉल अ नेशन, चार एकदम किसी नेशन को अगर आपने गिराना है आज के दौर में, दिस इज 21st सेंचुरी में, अगर आप किसी भी कौम को गिराना चाहते हैं तो फोर स्टेप्स, और ये अक्सर एजेंसीज इनको इस्तेमाल करती हैं, और वो ये कहते हैं द सबवर्जन इज डिफाइंड एज एक्शन डिजाइन टू अंडरमाइन द मिलिट्री इकोनॉमिक साइकोलॉजी एंड द पोलिटिकल स्ट्रेंथ और मॉरल्स ऑफ द गवर्निंग अथॉरिटीज। अब इसमें पहला है कि डीमोरलाइज किया जाए, डीमोरलाइज करने के लिए ये वो कहते हैं ये दिस इज अ प्रोसेस, इट डजेंट हैपन ओवरनाइट, एक रात में डीमोरलाइजेशन नहीं होती, 15 से 20 साल लगते हैं इसमें। मैं आप हम तमाम मोहरा या आलाकार बन जाते हैं अपनी कौम को डीमोरलाइज करने के लिए, दिस प्रोसेस 15 से 20 साल, अप्रॉक्सीमेटली 2 generations का गैप इसमें आ जाता है। Intellectual reprogramming of young people to become sympathetic to the ideas that, yani aap naujawan nasal jo paida hoti hai unme ye beej aise bo dete hain ki unko har cheez apni qaum ki wo lagti hai jisse wo demoralize hote chale jate hain, theek। Second hai destabilization, yani us qaum ko jab aitmad hi na raha, demoralize ho gaye, jitne log demoralized hote hain unka aitmad, quwwat aitmad unki bilkul jati reh jati hai। Stage of the process is intended to change the country's economy, foreign relations, defense system, aur defense system is our army। Mera ye batane ka, aap sare ke sare zyada akalmand hain aur khas taur pe jis generation se aur jis qaum se hamari wabastagi hai, go ke main pakistani qaum ke bare mein kehti hu, pakistan ho, india ho, bangladesh ho, कि हमारी अकवाम में औरत को मुकाम तो दिया गया मगर औरत की बात को माना नहीं गया। तो अब आप इसको जो भी कहें, बट दीज आर द फैक्ट्स, डीमोरलाइजेशन, डीस्टेबलाइजेशन। डीस्टेबलाइजेशन में आप वो जो काबिल एतमाद, अच्छा हमारे बीच में से एक बंदा शोशा छोड़ देता है और फिर हम उसको आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं और आनन फानन वो बात कितने लोगों तक जा पहुंचती है, काम की बात तो हमने सीखनी नहीं है। तो कहता द स्टेज इज जो डीमोरलाइजेशन डीस्टेबलाइजेशन है, स्टेज ऑफ द प्रोसेस इंटेंडिंग टू चेंज द कंट्रीज इकोनॉमी, फॉरन रिलेशन एंड द डिफेंस सिस्टम। अब हालांकि डेमोक्रेसी, ये डिप्लोमेसी क्या है, जो ममालिक के दरमियान होती है, आप अपनी जिस चीज के ऊपर आपने, जैसे इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, अभी CBC को इंटरव्यू उन्होंने दिया, मैं कोई इतनी बड़ी ये मत समझिएगा कि मैं किसी एक पार्टी के साथ हूँ, यस मैं आर्मी के साथ जरूर साथ करती हूँ, जिसमें बहुत से लोग नापसंद करते हैं, और बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो ईमेल करके मुझे ये कहते हैं कि हम विक्टम्स हैं, सबसे पहले हमको डीमोरलाइज किया गया, वी आर द विक्टम्स, और हमने उन खबरों के ऊपर आंखें बंद करके यकीन करना शुरू कर दिया। डीस्टेबलाइजेशन के बीच में हमारी अपने जो इदारे हैं उनके ऊपर से हमारे इत्मीनान को ख़त्म कर दिया गया। मैं इमरान खान साहब के इंटरव्यू के बारे में बात कर रही थी, CBC को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बड़े स्ट्रांग वर्ड्स में कहा, आपको पता है कि ये दुनिया में जितनी वायलेंस है इसकी वजह क्या है? सोशल मीडिया इज द मेन कॉज. ये जो आपकी वीडियो गेम्स हैं, दीज आर द मेन कॉज. यूथ के बीच में दीज वीडियो गेम्स ने गन्स और वो जो खून बिखरता हुआ जब वो देखते हैं, दे आर नॉट स्केयर्ड कि वो अगर एक खेल खेल के बीच में बंदों को मार रहे हैं तो देन वो कहते हैं ना, इंसान के अंदर वो एक हिजान पैदा हो जाता है कि अच्छा भाई अब तो मैं मार सकता हूं, तो वो खून का एक खौफ जो है ना वो जाता रहता है. तो इमरान खान साहब ने खुले तौर पे कहा कि दिस इज द सोशल मीडिया जिसकी वजह से ये इस्लामोफोबिया और ये जो नफरत का बीज बोया जा रहा है. अब मजे की बात यह है, कैनेडा में M103 जो बिल, ये जो मोशन 103 है, इसको अब कहा जा रहा है, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस भी एक्सप्लॉइट करते हैं. पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं जी गवर्नमेंट ने, मैं अगेन आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी गवर्नमेंट, जो सच की बात है, मैं आपके साथ जो मेरा एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, कि उन्होंने कहा कि अब जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस लिहाज से ले रहे हैं हमारे सूबे में कि जी इस मोशन को डिक्लाइन कर दिया. उन्होंने कहा हम तो यूनानिमसली इस्लामोफोबिया, और मेरा ख्याल है फोर्ड की गवर्नमेंट के बीच में आपने बेशुमार बस स्टॉप्स पे इस्लामोफोबिया के पोस्टर्स देखे, लगे थे कि नहीं लगे थे, ठीक. तो मगर पॉलिटिशियंस इसको मेरे और आपके जहनों को कैश करने के लिए कह रहे हैं कि जी हाँ जी वो जो अपोजिशन है उन्होंने हमारी मोशन जो 103 है उसको डिक्लाइन कर दिया. हालांकि वो कहते हैं कि इस सब्जेक्ट के ऊपर तो वी आर ऑल टुगेदर,
यूनानिमसली
वी आर ऑल टुगेदर कि इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए. कोई उन्होंने डिक्लाइन नहीं किया, देयर इज अ रीजन. उन्होंने कहा है कि इसका एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस के थ्रू आइएगा. तो इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो CBC को इंटरव्यू दिया, और उन्होंने उसमें दो बातें बहुत खूबसूरत कही. एक बात, एंड आज बल्कि एक मैं और एम्बेसडर का भी बयान देख रही थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. उन्होंने कहा कि ये जो नफरत है ना, ये नफरत सोशल मीडिया ने की है. हम तो वो पाकिस्तानी उर्दू की चीज़ें देखते हैं या अपने ग्रुप्स के बीच में चले फिर रहे हैं, मगर हर नेशन के अपने अपने ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, और सोशल मीडिया इस नफरत को प्रमोट करने का बायस बन रहा है, नंबर वन. नंबर टू, ये जितनी वीडियो गेम्स हैं ये इस नफरत को प्रमोट, बिकॉज वहां पे उन पे मारने का खौफ जो है वो उतर गया. तो कोई तो कौन है, ये लॉबियस्ट हैं, कौन लोग हैं कि जैसे अमेरिका में कहा जाता है कि गन्स बंद होनी चाहिए. एंड आई बिलीव कि गेम्स जो है ना, ये वीडियो गेम्स जो खून खराबे की हैं, ये डेफिनेटली रोकी जानी चाहिए. प्राइम मिनिस्टर ने दूसरी बात जो बहुत अच्छी की, इंटरव्यू ने उनसे सवाल किया, रोजमेरी जो है उन्होंने बड़ा प्यारा इंटरव्यू करती है. उन्होंने जब इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, चाइना आपका दोस्त है, अड्डों की भी बात हुई बीच में, तो चाइना आपका दोस्त है, मगर आप वो जो वहां के मुसलमान हैं उनके ऊपर जो ज्यादती है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करते. और प्राइम मिनिस्टर ने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि हम दरीना दोस्त हैं चाइना और पाकिस्तान, ये हम चाइना के साथ बिल्कुल, हमने इस टॉपिक पे बात की है उन मुसलमानों के बारे में, मगर हमने इनसाइड बात की है, हमने ओपनली नहीं, हमने जो हमारा कंसर्न्स है वो हमने रेज किए हैं, और चाइना ने उनको एड्रेस भी कर रहा है. ये दो बातें उन्होंने बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर ने कही, यानी डिप्लोमेटिकली उन्होंने अपनी बात को भी कन्वे कर दिया. हम अपने ताल्लुकात को भी नहीं खराब करना चाहते. बल्कि आज एक और एम्बेसडर है जिसका बयान मुझे पढ़ने के लिए मिला, उसने कहा है पाकिस्तान इज नॉट द सेम पाकिस्तान जो कि नवाज शरीफ के दौर में था और इससे पहले अदवार में था. पाकिस्तान इज टोटली चेंज एंड नाउ, अब उसको चेंज कैसे किया, पाकिस्तान के पास अपने रिसोर्सेज तो इतने नहीं है, हम IMF पे डिपेंड कर रहे हैं, हम और बहुत से इदारों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, पैसे की कमी है, टैक्स लोग नहीं सही तरह से पे कर रहे हैं. जो गवर्नमेंट की नौकरियां हैं वहां टैक्स पे होने हैं, मगर बिजनेसमैन टैक्स नहीं पे करता, मगर बिजनेसमैन के पास उसके लूप होल्स भी हैं, तो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा जबकि उस मुल्क के बीच में तो प्रॉब्लम्स तो उस मुल्क की हैं ना. तो चाइना ने उसको मदद दी हुई है, और चाइना अगर CPAC के प्रोग्राम को बिल्कुल, अब इसको नीचे नहीं जाना चाहिए. और अमेरिका ने आज ही, बल्कि जो बाइडन ने ये कहा है कि अमेरिका CPAC और जो वन रोड वन मैप जो है उसके मुतबादल एक प्रोग्राम लेके आएगा. चाइना ने बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और बांग्लादेश को चाइना ने ओपनली कहा है कि डू नॉट, वो जो क्वाड्रेट है ना, चार मुल्कों का एक ग्रुप है, उसमें ये बांग्लादेश को भी पांचवा मुल्क शामिल करना चाह रहे हैं, मगर चाइना ने बांग्लादेश को मना कर दिया कि तुम इसका हिस्सा मत बनना, उस ग्रुप में अमेरिका का हिस्सा मत बनना. अच्छा, डिस्टेबलाइजेशन, मैं आपसे कह रही थी किसी कौम को तबाह करने के लिए चार, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, 15 से 20 साल का प्रोसेस है। इसमें जनरेशन इन्वॉल्व होती है, जो हमारी नई पनीरी या नई पौध आ रही है उनके जहनों को कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है। डिस्टेबलाइजेशन के बीच में अपने ही इदारों के खिलाफ, चाहे वो पुलिस का, प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो पुलिस का इदारा है, चाहे वो हमारा आर्मी का इदारा है या गवर्नमेंट के इदारे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस उनमें से खत्म कर जाता है। और ये जो गवर्निंग बॉडीज हैं वो कहते हैं इट अल्टीमेटली डज नॉट मैटर इफ दे सक्सेसफुली डिलीवर ऑन देयर प्रोमिसज बिकॉज ऑफ देयर मेयर प्रोमिसज और द स्ट्रॉगर सोशल सेफ्टी नेट। तो बहरहाल ये डिस्टेबलाइज किया जाता है। अब क्राइसिस, फिर इसके बाद तीसरा मरहला आ जाता है कि उस मुल्क में क्राइसिस पैदा किए जाते हैं। दिस स्टेज इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द टर्म टाइमलाइन, यानी पहला 15 से 20 साल का है, दूसरा उसी का हिस्सा बनता है, और जो क्राइसिस का हिस्सा है ना, वक्ती तौर पे क्राइसिस पैदा कर दिए जाते हैं। देयर इज अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट दैट टेक्स प्लेस एंड लीड टू द सोशल अनरेस्ट डिवाइडिंग द नेशन। सोशल अनरेस्ट पैदा किया जाता है कुछ लोगों का, एक जैसे अब पाकिस्तान में क्राइसिस में से हम गुजर रहे हैं, हम एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तीसरी, मगर हम अपने जो हमारे इदारे जो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, हम उन्हीं को सपोर्ट करने के कायल नहीं है। एंड द थर्ड वन इज नॉर्मलाइजेशन। अब वो जो हमारे दिमाग के बीच में उन इदारों के लिए नफरत है और क्राइसिस की वजह से हमारी अपनी जब, यानी मुल्क पाकिस्तान ही हमारा नहीं है, हमारी पीपल्स पार्टी, हमारी मुस्लिम लून है, हमारी पीटीआई है। मैं तो यहां पर भी बात पीटीआई के लोगों को बात करते हुए देखती हूं, तो आप यकीन कीजिएगा खाम खा उन लोगों की उस बातचीत को सुन के लगता है कि या अल्लाह ताला ये किस तरह की जमात हमारे मुल्क में आ गई है। मगर लोग उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो लास्ट प्रोसेस है इसका, किसी मुल्क को या किसी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने का, दैट इज अ नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या है, द फाइनल स्टेज ऑफ द साइकिल, यानी किसी कौम को डिस्टेबलाइज करने का जो फाइनल स्टेज है इस साइकिल का, वो है नॉर्मलाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ सिटीजन एक्सेप्टिंग, यानी लोग एक हाँ भाई सच्ची मुची साड़ी तो फौज है ही खराब, साड़ी तो पुलिस डिपार्टमेंट है ही खराब, मैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, नोबडी इज रेडी टू डू देयर ड्यू डिलिजेंस, अपनी कोशिश। और हम खबर को, एक खबर सुनते हैं, एक हम बात सुनते हैं, दूसरा बंदा करता है, तीसरा कहता नहीं मैं सुनी सुनाई बात ही कर रहा, मैंने अपनी आंख से देखा था। हम इतना पक्का हो जाते हैं उस झूठ के ऊपर, और फिर हम अपनी कम्युनिकेशन के बीच में उसको एक नॉर्मल सी गुफ्तगू कर लेते हैं। वो कहते हैं दे नो लॉन्गर फाइट द न्यू मॉडल्स बट रादर बिलीव दैट इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द गवर्नेंस फॉर एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड। जैसे पाकिस्तान में अदलिया ने नहीं काम किया, अदलिया पे इतमाद उठ गया, अब हर आदमी ने कानून अपने हाथ में ले लिया, साइकिल तोड़ देंगे, दरवाजा तोड़ देंगे, गाड़ी तोड़ देंगे, गाड़ी को जला देंगे, इमारतों के शीशों को खत्म कर देंगे, अपने ही मुल्क में अगर जलाओ घेराव करेंगे तो हम क्या करेंगे। एंड एग्जैक्टली सेम थिंग वी आर डूइंग अब्रॉड। एनीवेज सुन रहे हैं प्रोग्राम साज आवाज में, आपके साथ आरफा मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया हमारे उन स्पॉन्सर का, मुलाकात करवाने लगी हूँ। हमारी एक प्रिंसेस आई है हमारे शहर के बीच में, अ लिटिल गर्ल, एंड मेरा आई विश कि आप हमारी प्रिंसेस को ले आओ। और जैस्मीन परमार हमारे साथ हैं, और आप देखिएगा उनकी बेटी सो रही होती है, एंड नो सूनर जब
बात शुरू करें आप,
जैस्मीन तो बात करना शुरू करेंगे तो देखिएगा पीछे से वो हमारी लिटिल,
नहीं वो जैस्मायरा जो है, हाँ। वो जैस्मीन को करेक्ट कर रही होती, भाई आपने ये सही नहीं खाया, ये कहते हैं
एग्जैक्टली। देखिए उसने माँ की वोम में सीखी है सारी बातें
सीख ली,
ठीक है। और आजकल का इट्स अ साइंस,
मैं आपसे कह रहा हूँ
इट इज साइंटिफिकली प्रूवन।
मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैस्मीन के पास आप ना जाएं वो मॉर्गेजेस के लिए, आप जैस्मारा को फोन करें।
शी विल गाइड टू मम्मा एट द मोमेंट, यू नो व्हाट, शी डजंट वांट टू टॉक टू यू, शी विल इनडायरेक्ट वे में आएंगे। बड़े लीडर डायरेक्ट कभी बात नहीं करते, इनडायरेक्ट वे में आते हैं। कल मेरी जैस्मीन जी से बात हो रही थी, और मेरा ख्याल है मेरे घर में लड्डू आने थे, बट मेरा टेलीफोन ही डेड हो गया माजिद भाई, एंड आई डिड नॉट हैव अ चार्जर। आपको पता ही है मैं घर से बेघर हूँ, तो देन आई डिड नॉट हैव माय चार्जर। हालांकि कल मुझे लड्डू मिलने थे, पर मेरे लड्डू बीच में ही रह गए, मेरा ख्याल उस पर नाम नहीं लिखा हुआ था। जैस्मीन जी अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक आशा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने उसके बाद आपको 3-4 बार फोन करा, आपका फोन सीधा वॉइसमेल पे जाए,
डेड हो गया था आपसे बात करते करते, और मुझे इतना बाद में दुख, मैं बल्कि मैं अपनी बहन को कह रही चंगे भले लड्डू आने से लड्डू विच ही रहेगा।
मैंने आपको एक्चुअली ऑनेस्टली दो तीन चीजों के लिए ही फोन करा था, तो जब आप आज फ्री होंगी तो मुझे प्लीज फोन कर लीजिए।
मैं बिल्कुल करूंगी, और कल मैंने अपनी दो दफा बहन से कहा, मैंने कहा अच्छे भले लड्डू खाने को मिल जाने थे, मीठा भी कोई नहीं था खाने के लिए कल, तो मैंने कहा लड्डू आते आते बीच में ही रह गए।
हाँ, आपका फोन डेड हो गया, उससे पहले आप मेरे को अपना एड्रेस देते।
ओ माई गॉड। एनी वेज, जैस्मीन परमार मॉर्गेजेस के हवाले से। जैस्मीन जी, सबसे पहले तो आई नो यू डू मॉर्गेजेस एंड यू मीट ट्रेमेंडियस नंबर ऑफ पीपल। व्हाट्स गोइंग ऑन विद द रियल स्टेट दीस डेज? आई अंडरस्टैंड द प्राइसेस आर गोइंग अप इवन नाउ।
या बिल्कुल सही आशा जी, एक्चुअली काफी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके काफी सारे कंसर्न थे, और आपने भी देखा होगा कि मार्केट में सेल्स के अगर हम हवाले से बात करें तो यस, सेल्स में थोड़ी सी जो है स्टेडीनेस आई थी अप अंटिल फ्यू वीक्स अगो, कि जहां लग रहा था कि सेल जहां पर ऑफर्स ज्यादा थी तो थोड़ी सी सेल्स में डिक्लाइन हुआ था, बट प्राइसेस में कुछ भी डिक्लाइन नहीं हुआ था। सो आई गेस बिकॉज स्ट्रेस टेस्ट था तो काफी सारे बायर्स ने होल्ड बैक करा था कि देखते हैं कि यू नो व्हाट द स्ट्रेस टेस्ट विल मेक अ डिफरेंस। तो इस करके जो सेल्स में जब आप अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें जो ऑफर्स थी उसमें हमने थोड़ा सा डिक्लाइन देखा था, विच हैज पिक्ड अप अगेन फ्रॉम लास्ट वीक, बट द प्राइसेस देयर वाज नो डिक्लाइन, वी स्टिल सॉ द सेम ट्रेंड ऑफ प्राइसेस, कि उसी प्राइस से जो है रियल एस्टेट मार्केट ऑफकोर्स आगे जा रही है। सो आई गेस जो थोड़ा सा यू नो जो बीच में थोड़ा सा स्टॉप आया था तो वो इसी वजह से कि मे बी एवरीबडी वॉन्टेड टू सी की स्ट्रेस टेस्ट से हमें कितना एज अ कंज्यूमर कितना हम इम्पैक्ट हो रहे हैं, एंड यू नो हमारी कितनी इनकम है, क्या हम जितने का बाय करना चाह रहे हैं हम उतने का बाय कर रहे हैं या नहीं। सो व्हेन इट कम्स टू स्टफ लाइक दिस वी ऑलवेज यू नो एडवाइस आवर बायर्स, हमारे कंज्यूमर्स, हमेशा हम उनको बोलते हैं कि जब भी आप बाय करना चाहें जरूर आप एक बार डिस्कस कर लें कि आपकी क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या है, आपका आप कितने के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं और आप कितनी मॉर्गेज ले सकते हैं। बिकॉज जब भी हमें मॉर्गेज लेनी होती है तो तीन चीजें बहुत बहुत जरूरी होती हैं, वी ऑलवेज टेल आवर क्लाइंट्स की सबसे पहली बात है, सबसे पहले तो आपका जो क्रेडिट है कि वो आपका क्रेडिट कैसा है, वही हमें बताता है कि क्या आपकी जो मॉर्गेज है क्या आप वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल लेंडर के साथ करवा सकते हैं या आपको बी लेंडर या ऑल्टरनेटिव लेंडर के पास जाना पड़ेगा, तो आपका क्रेडिट कैसा है। सेकेंडली आपकी डाउन पेमेंट कितनी है, कि आपके पास कितनी डाउन पेमेंट है, उस हिसाब से कई बार जरूरी नहीं है कि आप क्वालिफाई कम या ज्यादा के लिए हो रही हो, बट अगर आपके पास डाउन पेमेंट रिस्ट्रिक्शन है तो इवन दो अगर आप 7 लाख की मॉर्गेज के लिए भी क्वालिफाई हो रही हैं, बिकॉज ऑफ द डाउन पेमेंट रिस्ट्रिक्शन आप कई बार सिर्फ 500,000 तक ही बाय कर सकते हैं। सो दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू बाइंग अ हाउस, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी डाउन पेमेंट कितनी है और हमारा स्लाइडिंग स्केल कितना है डाउन पेमेंट का, क्योंकि जब हम 20% से कम की परचेज करते हैं तो अप टू 500,000 हमें 5% हम डाल सकते हैं, बट जितनी भी परचेज प्राइस में जो भी डिफरेंस है बिटवीन 500,000 टू अप टू 1,000,000 आपको उसका 10% डालना पड़ता है। सो जो आपकी एवरेज डाउन पेमेंट हो जाती है वो एनीवेयर बिटवीन 7-8% हो जाती है। थर्ड थिंग डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बगैर डेफिनेटली चाहे जो भी आपका क्रेडिट अच्छा हो और आपके पास डाउन पेमेंट जितनी मर्जी हो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, विच इज द इनकम, कि आपकी इनकम क्या है और आप कितने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्या प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल हैं, कौन से प्रोग्राम के अंदर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, अगर आप चाइल्ड टैक्स बेनिफिट आ रहा है क्या हम उसको इनकम में यूज कर सकते हैं, या अगर आप एलिमनी ले रहे हैं या आपके पास लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी है क्या वो चीजें हम इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो काफी तरह की डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाते हैं इनकम के लिए, तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डेफिनेटली इज इनकम। सो अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं या आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को सेल करके नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, स्टिल यू शुड गो थ्रू दिस स्क्रीनिंग प्रोसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए एज अ कंज्यूमर बहुत जरूरी है एज फ्रॉम अवेयरनेस परस्पेक्टिव। सो अगर आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हैं, आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप बाय कर रहे हैं या आप करने की सोच रहे हैं, फर्स्ट डू कॉन्टैक्ट अस और अपने मॉर्गेज प्रोफेशनल को जरूर कॉन्टैक्ट करें। हमसे बात करने के लिए और पूरे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए फील फ्री टू गिव मी अ कॉल डायरेक्टली एट 647-923-5659, 647-923-5659। हमारा ऑफिस बैंटन में है ऑन द मेजर इंटरसेक्शन ऑफ एयरपोर्ट रोड एंड क्वीन स्ट्रीट। वी विल बी मोर देन हैप्पी to help you and answer any of your questions that you may have related to your mortgage. So, koi bhi residential, commercial mortgage ke liye, ya private mortgages ke liye, ya aapko kisi bhi tarah ki business loan ke liye help chahiye, aap mere saath contact kar sakte hain. Once again, the phone number is 647-923-5659.
Thank you very much, Jasmine Ji. Thank you very much, 647-923-5659. Jasmine Parmar, mortgage aapne leni hai, self-employed and private funds available and second mortgage ke liye mortgage difficulties hain aapko, to aap down payment ke issue hain, to Jasmine Parmar ko ek dafa contact zarur kar lein. Jasmine Ji, thank you very much.
Thank you so much,
Asha Ji. Thank you very much. Sahab, achi sehat ka ek aapko ilaaj batati hoon. Aapko pata hai, kishmish. क्या कहते हैं उर्दू में, अंग्रेजी में किशमिश?